पाठ पांच अध्याय तीन।
हमने अब दो तरह की होम बलि पर विचार किया है, यानी दो तरह की बलि जो पीतल की वेदी पर रखी जाती थी और आग में भस्म हो जाती थी, और वे थे ओलाह और मिंचाह। ओलाह में जानवरों को जलाना शामिल था, जबकि मिंचाह में पौधों और अनाज को जलाना शामिल था। और मैंने इस बात पर जोर दिया है कि इन बलि के उद्देश्यों और सार को समझाने के सभी प्रयासों के बावजूद बाइबल हमारे अध्ययन के इस बिंदु पर यह स्पष्ट करती है कि यह बलि से निकलने वाला धुआं था जो एक प्राथमिक तत्व था, और यह धुआं परमेश्वर को एक सुखद सुगंध थी।
अब सवाल यह है कि हम आधुनिक ईसाई इसे किस तरह से लें। क्या हमें यह मानना चाहिए कि यहोवा ने सचमुच धुआं अंदर लिया था और उसे इसकी खुशबू बहुत पसंद थी और यही जानवरों और पौधों को जलाने का उद्देश्य था? उस समय के इब्रानियों के दिमाग में यह निश्चित रूप से अनुष्ठान का एक प्रमुख कारण था। बेशक यह हमें कुछ चिंता में डालता है ना? क्योंकि तुरंत ही हमारे दिमाग में मूर्ति पूजकों द्वारा अपने देवताओं को बलि चढ़ाने की एक मानसिक तस्वीर उभरती है, और मूर्ति पूजक देवता भोजन करते थे, शराब और बियर पीते थे, सेक्स करते थे, पार्टी करते थे, आपस में लड़ते थे, एक दूसरे की हत्या करते थे और भी बहुत कुछ। इसलिए यह स्वीकार करना थोड़ा आसान होगा यदि लैव्य व्यवस्था अध्याय एक और दो में होम बलि के धुएं की सुगंधित सुगंध को सूंघने वाले ईश्वर के कई संदर्भ मूर्ति पूजक देवताओं के लिए किए गए मूर्ति पूजक अनुष्ठानों की बात कर रहे थे, लेकिन वे नहीं हैं, वे इज़राइल के ईश्वर यहोवा की बात कर रहे हैं और ये उसके शब्द हैं। लैव्य व्यवस्था के इन बलिदान संबंधी अनुष्ठानों ने हमेशा चर्च के लिए समस्या उत्पन्न की है, तथा इन्हें रूपकात्मक रूप में प्रस्तुत करने से आमतौर पर समस्या का समाधान हो गया है। इस मुद्दे से निपटने के लिए हमें यह समझना होगा सभी धर्म मूलतः एक ही स्रोत से आए हैं, इसलिए दुनिया भर में प्रचलित असंख्य धर्मों के बीच कई समानताएं हैं। ईसाई धर्म से लेकर यहूदी धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और बाकी सभी धर्मों में। ज्यादा समय न लेते हुए मैं इसे थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा।
लगभग पांच वर्ष पहले विश्व भाषाविद अकादमी, ये शिक्षाविद हैं जो भाषाओं का अध्ययन करते हैं, एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंची थी जिसे वे दशकों से टालने का प्रयास कर रहे थे। सभी साक्ष्य निर्विवाद रूप से एक समय में एक ही मातृभाषा के अस्तित्व की ओर इशारा कर रहे थे। दूसरे शब्दों में अब यह बात निर्विवाद है कि सभी भाषाएं एक से आई हैं। बहुत पहले एक ही सार्वभौमिक भाषा थी, लेकिन समय के साथ ये किसी तरह कई भाषाओं में बदल गई, और ऐसा लगभग रातों रात हुआ। अब यह किसी भी बच्चे के लिए वास्तव में चौंकाने वाला नहीं है जिसने कभी संडे स्कूल में भाग लिया हो या तोरह पढ़ाया हो, क्योंकि एक भाषा से कई भाषाओं में यह परिवर्तन कैसे और लगभग कब हुआ ये बाइबल में बताया गया है। ये बाबेल के टॉवर पर हुआ था, और यह यहोवा ही था जिसने इसे विद्रोह के लिए एक न्याय के रूप में और लोगों को तितर बितर करने और दुनिया को और अधिक पूरी तरह से फिर से आबाद करने के लिए किया था।
लेकिन उसी घटना से एक और महत्वपूर्ण बात घटित हुई। निम्रोद के नेतृत्व में बाबेल के टॉवर पर होने वाली विकृत पूजा भी बदल गई और बर्च गई, और उन सभी बिखरे हुए लोगों का अनुसरण करने लगी जो अब अलग अलग भाषाएं बोलते थे, और बाइबल उन कई मूर्ति पूजक धर्मों के बुरे कटदहा को बुलाती है जो बाबेल में उत्पन्न हुए थे और जिनकी उत्पत्ति बाबेल में हुई थी, बाबुल रहस्य धर्म, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए सभी झूठे धर्म, जो परिभाषा के अनुसार वे हैं जो केवल इसराइल के परमेश्वर के नाम पर नहीं पुकारते हैं, बाबुल रहस्य धर्म है, और उन सभी की विशेषताएं समान हैं।
जल प्रलय के बाद पूरी दुनिया की आबादी में सिर्फ नूह का तात्कालिक परिवार ही शामिल था, और परिवार यहोवा को अच्छी तरह से जानता था। वे उसके प्रति समर्पित थे, जानते थे कि वह कौन है, वह मानव जाति से क्या अपेक्षा करता है। वे जानते थे कि वह विभिन्न कारणों से बलिदानों को पूरा करना चाहता था, और उन्हें परमेश्वर के कार्यक्रम पर अच्छी पकड़ थी। नूह के पूरे परिवार ने एकमात्र सच्चे परमेश्वर की एकमात्र और एकमात्र शुद्ध उपासना पर विश्वास किया और उसका पालन किया। अंततः हालांकि काफी कम समय में
नूह के वंशजों ने अपने अलग अलग रास्ते अपनाना शुरू कर दिया और ऐसा करते हुए उन्होंने अपने पापी मानव स्वभाव से उत्पन्न अपने विचारों और इच्छाओं को यहोवा की उचित उपासना में जोड़ना शुरू कर दिया। निम्रोद के समय तक मानव जाति एक बार फिर पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी थी, जैसा कि उनकी उपासना थी। निम्रोद के समय तक वे फिर से झूठे देवताओं, गैर देवताओं की उपासना करने लगे, जैसे कि जल प्रलय से पहले हुआ था। फिर भी मानव जाति के मूल के समान बिंदु के कारण दुनिया के प्रत्येक नए धर्म ने अपने साथ सच्चे ईश्वर के आवश्यक सिद्धांतों की सामान्य स्मृति को लिया, जिन्होंने उन्हें बनाया था, लेकिन उन्होंने अर्थों और प्रथाओं को संशोधित और विकृत किया। जब आप उनका बारीकी से अध्ययन करते हैं तो दुनिया के झूठे धर्म सतह पर बहुत अधिक समान हैं जितना कि वे अद्वितीय हैं। वे सभी काफी हद तक एक जैसे दिखते हैं। यह मुख्य रूप से सांस्कृतिक मुद्दे और परंपराएं और विभिन्न देवताओं के नाम हैं जो उन्हें अलग करते हैं। यही कारण है कि हम दुनिया के झूठे धर्मों में इतनी समानता पाते हैं। उदाहरण के लिए, वे सभी अपने प्रारंभिक इतिहास में बाढ़ की कहानी रखते हैं। क्यों? क्योंकि बाढ़ आई थी और क्योंकि दुनिया की सभी संस्कृतियां और लोग उस परिवार से आए थे जो बाढ़ से बच गए थे, नूह का परिवार। अधिकांश में एक ईश्वर पदानुक्रम है जिसमें एक प्रमुख सर्वोच्च देवता, एक पुरुष, उसकी पत्नी और उनका बेटा शामिल है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की योजना कि उसका बेटा एक महिला के माध्यम से दुनिया में आए शुरुआती दिनों से ही जानी जाती थी। लगभग सभी मूर्ति पूजक धर्मों में उनके मुख्य देवता के बेटे की मृत्यु होती है और इसी कारण से उनका पुनर्जन्म होता है। लगभग सभी मूर्ति पूजक धर्म इस बात पर जोर देते हैं कि सभी चीजों का निर्माण एक देवता या देवी द्वारा किया गया था, क्योंकि वास्तव में ऐसा ही था। और ये वही धर्म इस बात पर भी जोर देते हैं कि दुनिया का एक निश्चित अंत भी एक देवता द्वारा ही होगा, क्योंकि वास्तव में ऐसा ही होगा। लगभग सभी मूर्ति पूजक धर्मों में पवित्र पुस्तकें हैं जो एक शाश्वत ईश्वर की बात करती हैं, जो स्वयं अस्तित्व में है तथा आत्मिक सत्ताओं का क्षेत्र है, जिनमें कुछ बुरे हैं तो कुछ अच्छे। लगभग सभी मूर्ति पूजक धर्मों में किसी न किसी देवता या देवताओं के लिए बलि चढ़ाई जाती है और आमतौर पर इन बलियों को एक वेदी पर आगा में जला दिया जाता है तथा इसका धुआं देवताओं तक पहुंचता है जो बादलों में या उनके ठीक ऊपर रहते हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं वह यह है कि इजरायली धर्म की पूजा पद्धतियों के कई तत्व जो हम यहोवा द्वारा निर्धारित होते हुए देखते हैं, वे उस युग में पहले से ही अस्तित्व में मौजूद मूर्ति पूजक पूजा पद्धतियों के समान थे, क्योंकि मूर्ति पूजक पूजा पद्धतियों के लगभग सभी तत्व पिता की मूल और सच्ची पूजा के अत्यधिक भ्रष्ट संस्करण थे। हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा, इसराइल और व्यवस्था के साथ क्या कर रहा है। वह अपने न्याय और पूजा पद्धति को पुनः स्थापित कर रहा है, वह चीजों को साफ कर रहा है और उचित और सच्ची पूजा और सिद्धांत को पुनः स्थापित कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उसने पूरी दुनिया की आबादी को एक महान बाढ़ से नष्ट करके और फिर बचे हुए लोगों के साथ शुरुआत करके चीजों को साफ करके किया था। नूह मुझे इसका एक अपर्याप्त उदाहरण देने का प्रयास करने दें। मुझे नहीं पता कि यहां कोई फर्नीचर को फिर से तैयार करने में लगा है या नहीं। मुझे यह विशेष रूप से पसंद नहीं है, लेकिन मैंने यह किया है। आप सबसे भयानक दिखने वाली इस्तेमाल की हुई डेस्क या कुर्सी या टेबल पा सकते हैं, जिस पर वर्षों से पेंट और गंदगी की परतें जमी हुई हैं। लेकिन कुछ काम और कुछ रासायनिक स्ट्रिपर के साथ उन सभी जमा हुए सामानों को हटाना संभव है जो कभी वहां नहीं थे, और इसके नीचे एक सुंदर प्राकृतिक मूल लकड़ी की सतह को फिर से खोजा जा सकता है। फर्नीचर का वह टुकड़ा जो कबाड़ जैसा दिखता था, उसे उसकी सारी कुरूपता से निकालकर उसकी मूल स्थिति और उद्देश्य में वापस लाया गया। फिर भी यह अभी भी फर्नीचर का वही टुकड़ा है। यही परमेश्वर इसराइल और व्यवस्था के साथ कर रहा था। वह सारी चीजें हटा रहा था जो वहां नहीं थीं, और मानवता के बचे हुए हिस्से को वापस उस स्थिति में ला रहा था जो उसने हमें जिस तरह से बनाया था उसके करीब थी। वह सारी चीजें जो एकमात्र सच्चे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उचित आराधना में कोई स्थान नहीं रखती थी, उन्हें हटा दिया गया और त्याग दिया गया। हम पवित्र शास्त्रों में पाते हैं कि यह परमेश्वर के लिए मानक संचालन प्रक्रिया है कि वह लोगों और संस्कृतियों को जैसे वे हैं ले और फिर संस्कृति के सामान्य तत्वों का उपयोग उन लोगों के साथ सीखने के उपकरण और उनकी भव्य योजना के चित्रण के रूप में करें। मूसा के समय में इब्रानियों ने परमेश्वर को उसी तरह से चित्रित किया जैसे पृथ्वी पर हर कोई अपने देवी देवताओं को चित्रित करता है, किसी तरह की सुपर मानव जाति के रूप में। वे पूरी तरह से सही नहीं थे, लेकिन वे उनके बारे में ऐसा ही सोचते थे। और मेरे पास आपके लिए खबर है, बहुत सारे आधुनिक ईसाई मूल रूप से परमेश्वर को उसी तरह से देखते हैं, उन्हें बस इसका एहसास नहीं है। वह एक ऐसा परमेश्वर था जो इब्रानियों के दिमाग में बोलता, चलता, खुशी से उछलता, तलवार चलाता, और हां, धूप की सुगंधित सुगंध और होम बलि के धुएं को सूंघता था। मानवीय दृष्टि से मनुष्य को वास्तविक परिवर्तन अपनाने में बहुत समय लगता है। आदम और हव्वा के रूप में हमारे अस्तित्व के जन्म से लेकर आज हम जिस स्थिति में हैं, वहां तक लाने में परमेश्वर ने सहस्राब्दियों का समय लगाया है। और इस दौरान परमेश्वर ने हमारे परिचित परिवेश और प्रथाओं, यहां तक कि हमारी रोजमर्रा की मानवीय विशेषताओं और कमजोरियों का उपयोग करके हमें सच्चाई सिखाई है, और समय बीतने के साथ साथ उन्होंने हमें अपने बारे में और अपनी योजनाओं के बारे में और अधिक दिखाया है। एक समझा दूसरे पर आधारित है, उनके सिद्धांत और उद्देश्य परिपूर्ण हैं और वे कभी नहीं बदले हैं, लेकिन वे बदल गए हैं। परमेश्वर के साथ शांति प्राप्त करने के लिए जानवरों और अनाज के बलिदान से यह मसीह के बलिदान में बदल गया। धार्मिकता में व्यक्तिगत आज्ञाकारिता और अच्छे व्यवहार से बदलकर उस व्यक्ति के साथ एकता में होना शामिल है जिस पर हम अपना विश्वास रखते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इससे यह सीखें, लैव्य व्यवस्था और बलिदानों तथा उन बलिदानों के लिए बताए गए और निहित कारणों के हमारे अध्ययन में परमेश्वर के वचन को शाब्दिक रूप से लेने पर चिंता और बेचैनी न करें, भले ही यह कभी कभी हमारे आधुनिक दिमाग को परेशान करता है और हमारी संवेदनाओं पर हमला करता प्रतीत होता है, खासकर बाइबल की पुरानी किताबों में। हमारे बहुत से महान ईसाई नेताओं और शिक्षकों ने यह तय किया है कि झुंड बाइबल के इतिहास की इन वास्तविकताओं को संभालने में असमर्थ है, और इसलिए हमें बताते हैं कि हम जो तकवैश रहे हैं वह वास्तव में वह नहीं है जो हम पार एच रहे हैं, कि इसका अर्थ पूरी तरह से कुछ और है। उन्हें डर है कि अगर हम अपनी आस्था की जड़ों और अपने बाइबल नायकों में बहुत अधिक मूर्ति पूज की और अपूर्णता को उलझा हुआ देखेंगे तो हम विश्वास खो सकते हैं। खैर, मैं कहता हूं कि यह बकवास है। बाइबल बस सत्य है, और सत्य यह है कि अब्राहम पहले एक मूर्ति पूजक था, कि इब्रानियों को लगातार मूर्ति पूजा और अवज्ञा से जूझना पड़ रहा था। यह सत्य है कि इब्रानियों की अनेक उपासना पद्धतियों, जैसा कि परमेश्वर द्वारा निर्धारित की गई थी तथा जो हम विश्वासियों को दी गई थी, बाह्य रूप से मूर्ति पूजक उपासना पद्धतियों के समान थी जो बहुत पहले थी, मूसा के समय का है। तो धुएं के मामले में जिसने मुझे सबसे पहले इस विषय पर पहुंचाया, हां, इब्रानियों ने कल्पना की थी कि परमेश्वर धुएं को सूंघ रहा है और प्रसन्न हो रहा है। उनकी असली समस्या यह है कि उन्होंने अनुष्ठान बलिदान प्रक्रियाओं के बारे में पूरी तरह से भौतिक सांसारिक अर्थ में सोचा, जो कि सामान्य तौर पर वे परमेश्वर को जिस तरह से देखते थे, बजाय आध्यात्मिक स्वर्गीय अर्थ के जो धीरे धीरे मनुष्य के सामने प्रकट होगा जब हम इसे अपनाने में सक्षम हो जाएंगे। और बेशक यह आध्यात्मिक अर्थ है जिसे समझाने में यीशुआ इतना समय व्यतीत करता है। आइए अध्याय 3 पढ़ें। लैव्य व्यवस्था, अध्याय 3 पूरा पढ़ें। यहां हम एक तीसरे प्रकार के बलिदान का सामना करते हैं जिसे आम तौर पर शांति बलिदान के रूप में अनुवादित किया जाता है, और हमें जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वह यह है कि पहले दो प्रकार के बलिदानों की तरह जिन्हें हमने देखा है, ओलाह और मिंचाह, इस बलिदान का भी पापों के प्रायश्चित से कोई लेना देना नहीं है, यानी यह परमेश्वर को एक और भेंट है जो यहोवा के खिलाफ सीधे अपराधों या बुरे व्यवहार के लिए जिम्मेदार नहीं है पाप।
इब्रानी भाषा में इस भेंट को जेवा शेलामीम या प्रायः केवल जेवा कहा जाता है, और सभी विद्वान इन शब्दों का अर्थ शांति की भेंट के रूप में नहीं करेंगे। आपकी कुछ बाइबलें इसका अनुवाद कल्याण की भेंट या संगति की भेंट के रूप में करती हैं। एक और हाल ही में व्याख्या अभिवादन का पवित्र उपहार है। इस सरल वाक्यांश जेवा शेलामिम का अनुवाद करने में समस्या क्यों है? खैर, शेलामिम का मूल शब्द, और याद रखें इब्रानी एक ऐसी भाषा है जो एक मूल शब्द की स्थापना करके काम करती है और फिर उस मूल शब्द से कई भिन्नताएं और बारीकियां बनाई जाती हैं। मूल शब्द वही शब्द है जिससे हमें परिचित इब्रानी अभिवादन शालोम मिलता है, और हालांकि अधिकांश गैर यहूदी इसे महसूस नहीं करते हैं, शालोम का अर्थ हेलो या कैसे हो की तुलना में बहुत व्यापक और गहरा है। शालोम अपने साथ एक अनुग्रहपूर्ण अभिवादन, शांति, कल्याण और भाईचारे की संगति का विचार रखता है, सब एक ही समय में। इसलिए जेवा शेलामिम के इन अनुवादों में से कोई भी जो मैंने आगे रखा है गलत नहीं है। बस इतना है कि कोई भी अपने आप में इस बलिदान के नाम और अर्थ को पूरी तरह से कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो यह यहोवा के लिए एक अभिवादन, उपहार, संगति, कल्याण, शांति भेंट है। फिर से ध्यान दें, यह किसी पाप या अन्य पाप से निपटने के बारे में नहीं है जो उपासक ने किया है। सरलता के लिए मैं इस विशेष बलिदान को शांति बलिदान कहना चुन रहा हूं। अब लेव्य व्यवस्था अध्याय 3 की यह शांति बलि हमें एक नई श्रेणी की भेंट से परिचित कराती है, जेवा। जेवा औलाह या मिंचाह की तुलना में निम्न श्रेणी की भेंट है, और यह इस तथ्य में परिलक्षित होता है कि औलाह और मिंचाह में केवल पुजारियों को ही बलि की भेंट के किसी भी भाग का उपयोग करने या उसे लाभ उठाने की अनुमति थी। औलाह में पुजारी पशु की खाल रख सकते थे, मिंचाह में पुजारी अनाज की भेंट के बड़े हिस्से को अपने निजी भोजन के रूप में रख सकते थे। वास्तव में उन्हें उस भोजन को तंबू के आंगन में खाना पड़ता था, क्योंकि इसे पवित्र भोजन माना जाता था। जेवा, शांति भेंट, बलिदान का वर्ग भी एक पवित्र भोजन माना जाता था। हालांकि इस पवित्र भोजन को उपासक के साथ साझा किया जा सकता था, एक गैर पुजारी। इसलिए चूंकि एक आम आदमी जो लोग इसमें हिस्सा ले सकते थे, उन्हें पहले दो बलिदानों की तुलना में थोड़ा कम पवित्र बलिदान माना गया। जेवा, शांति बलिदान, और ओलाह, जला हुआ बलिदान, के बीच कई समानताएं हैं। उदाहरण के लिए ध्यान दें कि दोनों मामलों में निर्दिष्ट बलि पशु पर हाथ रखने की प्रथा सेमीखा, जैसा कि इब्रानी में कहा जाता है, की आवश्यकता होती है। याद रखें कि सेमीखाह में उपासक से पशु पर किसी प्रकार का प्रतीकात्मक अपराध हस्तांतरण शामिल था। सेमीखाह ने यह भी संकेत दिया कि इस विशेष पशु को उपासक ने अपने बलिदान के रूप में नामित किया था, और यह अब परमेश्वर की संपत्ति थी। इसके अलावा ओलाह की तरह शांति बलिदान जेवा शेलामीम में केवल पशु, पौधे जीवन नहीं शामिल हैं, और इन जानवरों को पीतल की वेदी पर जलाया जाना है। फिर भी जेवा और ओलाह के बीच अंतर भी हैं। शांति की पेशकश में जानवर के केवल कुछ हिस्सों को जलाया जाना चाहिए, और जेवा के लिए जिन जानवरों की बलि दी जा सकती है उनमें वे पक्षी शामिल नहीं हो सकते जिन्हें ओलाह में बलि दी जा सकती है। इसके अलावा, जैसा कि हम बाद के अध्यायों में देखेंगे, बलि के जानवर की पूर्णता का उच्चतम स्तर जेवा के कुछ प्रकारों में उतना कठोर नहीं है, लेकिन यह कभी भी एक खराब नमूना नहीं हो सकता है। और जाहिर है शांति की पेशकश की कुंजी यह है कि उपासक, गैर पुजारी, उस मांस में भाग ले सकते हैं जिसे अलग रखा जाता है और वेदी पर जलाया नहीं जाता है। एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि मादा जानवरों के साथ साथ नर जानवरों का भी शांति की पेशकश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जेवा शांति बलि के लिए मवेशी, भेड़ और बकरियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। वध के बाद यह पशु की चर्बी होती है जो जिगर, गुर्दे और अंतड्डियों के चारों ओर होती है, जिसे वेदी पर जलाया जाता है।
इस विशेष प्रकार की बलि की चर्बी को इब्रानी में लैव्य व्यवस्था कहा जाता है और इस प्रकार की पशु चर्बी को इजरायलियों द्वारा नहीं खाया जाना चाहिए, जैसे कि किसी पशु के रक्त का सेवन नहीं किया जाता है। हालांकि पशु के शरीर में एक अलग तरह की चर्बी होती है, यह पशु की त्वचा के ठीक नीचे स्थित वसा की एक परत होती है या पशु के मांस पर अन्य स्थानों पर चिपकी होती है। इस प्रकार की चर्बी का उपयोग बलि के लिए नहीं किया जा सकता है।
यहां पांचवें पद में हम उस समस्या में भाग लेते हैं जिस पर मैंने अपने पाठ के पहले कुछ मिनट चर्चा में बिताए थे, वह जो हमारी संवेदनाओं को चोट पहुंचाती है और हमारे दिमाग को थोड़ा परेशान करती है। हमें बताया गया है कि शांति की भेंट जेवा धुएं में बदल जाती है, जो यहोवा के लिए सुखद गंध है। मैं इस मुद्दे पर विस्तार से नहीं बताना चाहता, लेकिन ध्यान दें कि मांस को जलाने का स्पष्ट उद्देश्य यह है कि यह धुआं पैदा करे, और धुआं अपने साथ एक गंध लेकर आता है जिसका उद्देश्य परमेश्वर को संतुष्ट करना है।
आगे हमें बताया गया है कि यदि शांति बलि के रूप में भेड़ की बलि दी जाती है तो उन निर्दिष्ट आंतरिक अंगों के चारों ओर की चर्बी के अतिरिक्त भेड़ की पूंछ से निकाली गई चर्बी का भी उपयोग किया जाना चाहिए।
अब इसमें हर तरह की भेड़ की पूंछ शामिल नहीं है। भेड़ की एक खास किस्म थी जिसे इब्रानी साथ ही उस युग में अन्य मध्य पूर्वी संस्कृतियों द्वारा बहुत पसंद किया जाता था और इसे मोटी पूंछ वाली भेड़ कहा जाता था। यह इस विशेष प्रजाति की पूंछ की चर्बी थी जिसे मांगा जा रहा था।
पद 12 में एक बकरी को अधिकृत शांति बलि के रूप में नामित किया गया है। यह कुछ लोगों को आश्चर्यचकित करता है क्योंकि उन्हें लगता है कि जब नए नियम में मसीहा भेड़ों से बकरियों को अलग करने की बात करता है तो किसी न किसी तरह से बकरियों को सभी परिस्थितियों में अशुद्धता या बुराई का प्रतीक माना जाना चाहिए। वास्तव में बकरियां मुख्य बलि पशु थीं क्योंकि वे आमतौर पर भैरों की तुलना में ज्यादा हृष्ट पुष्ट और ज्यादा प्रजननशील होते हैं। वे यहोवा के लिए पूरी तरह से स्वीकार्य बलिदान थे, फिर भी वे भैरों की तुलना में थोड़ा कम दर्जा रखते थे और कई बार जैसे भैरों से बकरियों को अलग करने में उन्हें नकारात्मक माना जाता है। भोजन में खमीर, खमीर की तरह जो इसके उपयोग के आधार पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है, बकरियों को भी सिक्के के दोनों पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हुए देखा जा सकता है। अब पद 17 हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देता है। सबसे पहले यह हमें बताता है कि यह हेलेव के बारे में एक कानून है जो बलि के पशु की स्वीकार्य चर्बी है और यह पशु के खून से भी संबंधित है।
दूसरा, यह हमें इस कानून पर सीमाओं की प्रतिमा देता है, यानी यह कानून कितने समय तक प्रभावी रहेगा, यह स्पष्ट रूप से बताता है कि यह हमेशा के लिए है। और तीसरा, यह बताता है कि यह कानून कहाँ प्रभावी है, मूल रूप से जहां वह जगह है जहां कोई यहूदी रहता है। इसमें आगे कोई टिप्पणी नहीं है कि इसमें तंबू भी शामिल है। दूसरे शब्दों में, अब तक लैव्य व्यवस्था में दिए गए निर्देशों हैं जहां इब्रानी लोग का संबंध केवल तंबू में होने वाली घटनाओं से है, अब वसा और रक्त खाने से संबंधित पहलू को उन सभी जगहों पर लागू किया गया। वे हैं, यह कानून प्रभावी है। तो शांति की भेंट का उद्देश्य क्या है? बेशक सबसे महत्वपूर्ण सुगंधित धुआं छोड़ने के अलावा, लैव्य व्यवस्था साथ जिस पर हम कुछ हफ्तों में चर्चा करेंगे, हमें तीन कारण बताता है कि शांति की भेंट को प्रभु के सामने क्यों लाया जाना चाहिए। एक स्वीकारोक्ति की भेंट के रूप में, दो एक स्वेच्छा से की गई भेंट के रूप में, और तीन एक प्रतिज्ञा की भेंट के रूप में। हम देखते हैं कि शांति की भेंट विशेष अवसरों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक बलिदान की भेंट थी। यह ओलाह और मिंचाह की तरह एक नियमित दैनिक भेंट नहीं थी, जेवा उपासक के विवेक पर था। खैर, हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जेवा प्रभु को अभिवादन का उपहार है, यह शांति का उपहार है और यह सर्वशक्तिमान ईश्वर से भलाई की प्रार्थना है। यह पिता के साथ संगति के लिए एक अनुरोध भी है जो ओलाह और मिनचाह बलिदानों से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये सभी पहले तीन बलिदान परमेश्वर के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने उसके प्रति आज्ञाकारिता और वफादारी प्रदर्शित करने और उसके द्वारा व्यक्तिगत स्वीकृति प्राप्त करने के लिए है। यह भी दर्शाता है कि उपासक यह पहचानता है कि यह परमेश्वर द्वारा व्यक्तिगत स्वीकृति ही है जो उपासक को शालोम, शांति और कल्याण प्रदान करती है। राम, मुझे इसे परिप्रेक्ष्य में रखना चाहिए और यह एक ऐसा बिंदु है जिसे भूलना बहुत आसान है। ये सभी बलिदान और सभी अनुष्ठान और सभी कानून केवल छुड़ाए गए लोगों के लिए हैं। इनमें से कोई भी बलिदान, अनुष्ठान और कानून का पालन करने से मुक्ति नहीं मिली, बल्कि यह था कि परमेश्वर ने पहले इज़राइल को छुड़ाया और फिर उसने उन्हें उन लोगों के लिए आवश्यक कानून और अनुष्ठान दिए जो परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सुधारने और बनाए रखने के लिए छुड़ाए गए थे। यह तोरह के लोगों के लिए आज के विश्वासियों से अलग नहीं था। जिस तरह मूसा के झुंड ने मुक्ति पाने के लिए बलिदान नहीं किया, यह परमेश्वर की ओर से एक मुफ्त उपहार था, वैसे ही यह हमारे साथ भी है कि परमेश्वर हमें एक मुफ्त उपहार मसीहा के माध्यम से के रूप में मुक्ति देता है और फिर हमें समझाता है कि उसके साथ सही संबंध कैसे बनाए रखें और बनाए रखें। मैं कुछ समय पहले फ्लोरिडा के कैसलबेरी में एक चर्च में एक विशेष समारोह के लिए गया था और जिस चर्च में मैं गया था वहां आयोजित रात्रि भोज में एक छोटे लड़के लगभग 10 साल के को पूरे समूह के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया था। उसकी प्रार्थना छोटी और गहन थी। हमारे भोजन के लिए परमेश्वर का शुक्रिया अदा करने के बाद उसने कहा, परमेश्वर मुझे आज्ञाकारी बनाओ ताकि मैं एक अच्छा जीवन जी सकूं। ये शायद शांति भेंट के अर्थ के लिए सबसे अच्छा सारांश है जो कोई भी कभी भी दे सकता है। अब आइए शांति बलि देने के लिए बताए गए 3 अवसरों पर एक नजर डालें। जेवा। पहला अवसर स्वीकारोक्ति भेंट का उपयोग तब किया जाता था जब उपासक अपने शत्रुओं से मुक्ति या बीमारी से चंगाई के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता था। चूंकि किसी अज्ञात पाप को अक्सर शत्रु द्वारा उत्पीर्ण या बीमार होने का कारण माना जाता था, इसलिए यह तर्कसंगत था कि यदि उसे लगता था कि उसकी दुर्दशा का कारण यही है तो पाप की स्वीकारोक्ति आवश्यक थी। अब यह कहने की जरूरत नहीं है कि ये पाप अनजाने में किए गए होंगे, क्योंकि वे उपासक को पता नहीं थे, लेकिन वास्तव में यह उपासक की पापी स्थिति पर ईश्वर की दया की तलाश करने के बारे में था, न कि दुर्व्यवहार के कृत्यों के लिए। दुर्व्यवहार के कृत्यों से दूसरे प्रकार के बलिदानों के माध्यम से निपटा जाता था जिनका हमें अभी तक अध्ययन करना है। इसराइली जीवन में शांति बलिदान छेवा के व्यावहारिक उपयोग का एक उदाहरण पाने के लिए अपनी बाइबल को न्यायियों 20 का 24 से 28 में बदल दें, फिर हम न्यायियों 21 का 1 से 4 को भी देखेंगे। न्यायियों 20 का 24 से 28 और न्यायियों 21 का 1 से 4 पढ़ें। इन दोनों मामलों में इजरायली इस बात से हैरान थे कि उनके साथ क्या हो रहा था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले ओलाह चढ़ाया जो परमेश्वर का ध्यान और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए बनाया गया था, और फिर शांति बलिदान चढ़ाया जो एक स्वीकारोक्ति बलिदान था, अपनी पापी स्थिति और अयोग्यता की स्वीकारोक्ति। आइए अब शांति अर्पण के दूसरे और अलग प्रकार पर नजर डालें जिसे प्रतिज्ञा अर्पण कहा जाता है। उस दिन परमेश्वर से यह प्रतिज्ञा करना आम बात थी कि अगर वह आपकी किसी समस्या से बाहर निकलने में मदद करता है या किसी विशेष जरूरत के लिए आप पर दया करता है तो आप बदले में परमेश्वर के लिए कुछ करने की प्रतिज्ञा करेंगे। जब परमेश्वर के प्रति वह प्रतिज्ञा, वह व्रत पूरा हो जाता था तो उसे शांति अर्पण सहित समारोह के साथ समाप्त किया जाता था। इस तरह के जेवा, इस मन्नत की भेंट का सार याकूब की कहानी में अच्छी तरह से दर्शाया गया है जब उसका भाई एसाव उसे धोखा देकर भाग गया और अपने पिता इसहाक से ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार प्राप्त कर लिया जो परंपरा के अनुसार एसाव का था। हम पहले उत्पत्ति 28:16-22 और फिर उत्पत्ति 33 का 1 से 4 और 35 का 1 से 4 13 से 15 को देखेंगे। पढ़ें उत्पत्ति 28:16-22, पढ़ें उत्पत्ति 35:1-4 और 13-15। अगर आपको आज हमारे पाठ की शुरुआत याद होगी तो मैंने बताया कि परमेश्वर ने बहुत पहले ही अपने सिद्धांतों को व्यवहार में ला दिया था, मूसा और व्यवस्था से बहुत पहले, लेकिन वे सैकड़ों हजारों संस्कृतियों के कारण अलग अलग हद तक अपमानित और भ्रष्ट हो गए थे। यहां हम याकूब को देख सकते हैं, मूसा को व्यवस्था दिए जाने से लगभग 500 साल पहले, जो जेवा प्रकार की भेंट चढ़ा रहा था। जेवा शांति भेंट के सभी तत्व मौजूद हैं।
याकूब द्वारा खड़ा किया गया खरा पत्थर इब्रानी में है मत्सेबा, जो किसी प्रकार के स्तंभ को इंगित कर सकता है, जिसका उपयोग चिन्ह के रूप में किया जाता है, या एक बहुत ही आदिम प्रकार की वेदी। जाहिर है क्योंकि याकूब इसे यहोवा को भेंट चढ़ाने के स्थान के रूप में उपयोग कर रहा था, इसीलिए यह सीमा चिन्ह से ज्यादा एक वेदी थी। और कहानी याकूब द्वारा की गई प्रतिज्ञा को दर्शाती है, यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो तुम मेरे परमेश्वर होगे। और फिर कई वर्षों बाद जब याकूब ने यहोवा को अपना परमेश्वर बनाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली, तो उसने एक मंदिर बनवाया मत्सेबा, और उस पर मन्नत की भेंट के रूप में परमेश्वर को तेल चढ़ाया। लेव्य व्यवस्था 3 में मूसा को इतने विस्तार से बताई गई मन्नत की भेंट याकूब के साथ हुई इस घटना के 5 शताब्दियों बाद दी गई थी, जिसे हम उत्पत्ति में पाते हैं। और भले ही मन्नत की भेंट के सिद्धांत और सार समान हैं, लेकिन याकूब के समय से परमेश्वर ने इसे और अधिक परिष्कृत और परिभाषित किया है, जब याकूब ने अपने युग के लिए उस क्षेत्र में प्रथागत कार्य किया था। जब याकूब ने खरा पत्थर स्थापित किया, मन्नत मानी और तेल की बलि चढ़ाई, तो वह कोई एड लिबिंग नहीं कर रहा था, वह कुछ नया आविष्कार नहीं कर रहा था। उसने जो किया वह न केवल इब्रानियों के बीच बल्कि अधिकांश मध्य पूर्वी लोगों के बीच अपने समय के लिए प्रथागत और विशिष्ट था। तीसरे प्रकार की शांति भेंट को अक्सर स्वेच्छा से की जाने वाली भेंट कहा जाता है। यह प्रतिज्ञा और स्वीकारोक्ति प्रकार की शांति भेंटों से काफी अलग थी, क्योंकि स्वेच्छा से की जाने वाली भेंट में उपासक ईश्वर से कुछ नहीं मांग रहा था, बल्कि यह केवल यहोवा के प्रति कृतज्ञता की एक सहज अभिव्यक्ति थी। यह काफी खुशी का अवसर था।
सभी 3 प्रकार की शांति भेंट जेवा पवित्र भोजन के साथ समाप्त होती है, जिसमें आम तौर पर उपासक और पुजारी दोनों शामिल होते हैं। सभी 3 प्रकार की शांति भेंट सामान्य रूप से प्रकृति में हर्षोल्लासपूर्ण थीं, हालांकि स्वेच्छा से की गई भेंट सबसे अधिक हर्षोल्लासपूर्ण थी। अब ऐसा ना हो कि हम सोचें कि इब्रानियों द्वारा उस युग के विशिष्ट, यहां तक कि मूर्ति पूजक जैसे सांस्कृतिक धार्मिक अभिव्यक्तियों का उपयोग इस हद तक चला गया कि यह संकेत दिया गया कि जब इसराइली परमेश्वर की उपस्थिति में अपने पवित्र भोजन का आनंद ले रहे थे, तो वास्तव में परमेश्वर भी भोजन खा रहा था। हमें केवल भजन 50:12-13 को देखना होगा। यह कहता है, यह परमेश्वर बोल रहा है, यदि मैं भूखा होता तो मैं तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और उसमें जो कुछ है वह मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लोहू पीऊं?
इस भजन से हमें यह समझना चाहिए कि एक दाऊद के युग, मूसा के 300 साल बाद में भी इब्रानियों की मूर्ति पूजक मानसिकता ने कभी कभी यहोवा को भोजन खाते हुए देखा होगा, अन्यथा परमेश्वर ने इब्रानियों को इसके बारे में डांटा नहीं होता। वे अभी भी उसे सांस्कृतिक तरीके से देखते थे, जैसे कि सभी मध्य पूर्वी लोग अपने सभी देवताओं को देखते थे, एक तरह के सुपर ह्यूमन के रूप में, जिसमें सभी प्रकार के शारीरिक मानवीय गुण और जरूरतें होती हैं। और 2, परमेश्वर यह स्पष्ट कर रहा था कि उसकी मानवीय जरूरतें और नहीं हैं, वह न तो खाता है और न ही पीता है। इसलिए उसके निर्देशों का अंतिम अर्थ, जैसे कि यहाँ लेव्य व्यवस्था में, जिसमें यह कहा गया है कि धुआं परमेश्वर के नथुनों के लिए एक प्यारी खुशबू है, इसका अर्थ भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। परमेश्वर के नथुने नहीं है, नहीं वह धुएं को उस तरह से सूंघता है जिस तरह से हम मनुष्य सोचते हैं। बाइबल में जितनी बार, शायद सैकड़ों बार, हमें बताया गया है कि परमेश्वर रो रहा है या चिल्ला रहा है या तलवार लहरा रहा है या किसी के पीछे भाग रहा है आदि, वे सब प्रतीकात्मक हैं। फिर भी अगर यहोवा मानव जाति से संवाद करने जा रहा है, तो उसे हमेशा इसे सरल बनाना होगा और ऐसे शब्दों का उपयोग करना होगा जिन्हें मनुष्य पहचान सके और समझ सके। एक अंतिम बात और हम समाप्त करेंगे, हमें नया नियम में शांति भेंट या जेवा शब्द नहीं मिलेगा, मुख्य रूप से इसीलिए क्योंकि हमारे पास केवल ग्रीक में ही पांडुलिपियां हैं, इब्रानी में नहीं। चूंकि जेवा एक इब्रानी अवधारणा है, इसलिए कोई समान ग्रीक शब्द नहीं है। हालांकि हमारे पास जेवा बलिदान के विभिन्न रूपर्वों के स्पष्ट संदर्भ हैं। आमतौर पर हम जिन विभिन्न प्रकार के बलिदानों के बारे में सीख रहे हैं, उनके लिए सभी शब्द एक ही व्यापक शब्द में समाहित हैं, बलिदान। लेकिन अवसरों और प्रक्रियाओं के कारण नया नियम में विभिन्न प्रकार के बलिदान अभी भी पहचाने जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्रेरितों के काम में जब पौलुस ने 4 लोगों के बलिदानों के लिए भुगतान किया,
जिन लोगों ने नाजीर की शपथ ली थी वे शांति बलिदान के प्रकार शपथ बलिदान को करने के लिए आवश्यक बलि के जानवरों के लिए भुगतान कर रहे थे। जब हम लेव्य व्यवस्था का अध्ययन कर चुके हैं, तो जब आप नया नियम पढ़ते हैं तो आप खुद को विभिन्न प्रकार के बलिदानों को पहचानते हुए पाएंगे।